touch of love.
हम विजय के गीत को गाते हैं, और हमारा जो राजा है उसने विजय प्राप्त करी क्रूस पर, कलवरी के क्रूस पर उसने विजय प्राप्त करी।
The right hand of the Lord
upholds, और जो उद्धार पाए हैं वो आनंदित हों, क्योंकि मेमने ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, और इस विजय के संगीत को आनंद के साथ गाएं, और उस खून के अंदर, लहू के अंदर सामर्थ पाई जाती है जिसने कि शैतान और नरक के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, और परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है उसके अंदर विजय पाई जाती है। और उद्धार पाए लोगों, आनंदित हो कि मेमने ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। और इस प्रसन्नता के साथ उस विजय में आनंदित हो जाओ जो उसके लहू के द्वारा जिनका उद्धार हुआ।
Very soon we will go home.
परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है वो ऊंचे पर उठाया गया, उसको आदर मिला, उसको महिमा मिली, उसमें विजय है। हर उद्धार पाए हुए लोगों उसमें आनंदित रहो, क्योंकि मेमने ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की है। आज इस संडे की सुबह को, संडे की मॉर्निंग को, रविवार की मॉर्निंग को हम आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन कहते हैं।
इन द नेम ऑफ द लॉर्ड,
प्रभु हम सबको आशीषित करे। आज इस सुबह भी हम बहुत ज्यादा आनंदित हैं, बहुत ज्यादा आभारी हैं कल रात के लिए, प्रभु के वचन के लिए और परमेश्वर का वो जो परमेश्वर का वचन जो है वो सिर्फ इतिहास नहीं है, लेख नहीं है, परंतु वो आत्मा है जिसके लिए परमेश्वर ने उसे भेजा है, उसको वो पूरक करता है, संपूर्ण करता है। मैं परमेश्वर के वचन से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कोलोसियों की पत्री। कल हमने कोलोसियों 1:14 से पढ़ा था, आज हम कोलोसियों 2 से पढ़ेंगे। कोलोसियों 2:9 क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और सारे अधिकार का शिरोमणि है। पौलुस यहाँ कोलोसियों को लिख रहा है और इफिसियों 1:3 में, प्रभु यीशु मसीह का जो पिता है जिसने हमको सभी आत्मिक आशीषों में, वरदानों में, स्वर्गीय स्थानों में स्थापित कर दिया है और प्रभु यीशु मसीह में, यहाँ हमने पढ़ा क्योंकि तुम उसमें भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। बहुत धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु के नाम की महिमा हो। कल हमने सुना था, कल हमने कोलोसियों 1:18 से पढ़ा था कि वो देह का कलीसिया का सिर है और पॉल लिखता है और 2:13 में देखिए पौलुस लिखता है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। बहुत धन्यवाद प्रभु का। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। और उसको मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन सब पर जयकार की ध्वनि सुनाई दी। बहुत धन्यवाद हो प्रभु का इस संपूर्ण उद्धार के लिए, इस संपूर्ण विजय के लिए जो कि क्रूस पर हमने प्राप्त करी प्रभु के द्वारा। और प्रभु ने वो जो विधियों का लेख था उसको उसने, जो हमारे विरोध में था उसको उसने मिटा डाला। हम उसके बड़े आभारी और धन्यवादी हैं कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया और हमारे जीवनों में क्या क्या किया और उसने उन सभी बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। नरक के ऊपर भी उसने विजय प्राप्त कर ली, मौत के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली। जब वो क्रूस के ऊपर उसने अपनी जान दी, हम उसके नाम की कितनी प्रशंसा करते हैं। और अब भाई स्मिथ, अब भाई स्मिथ आकर के प्रार्थना करेंगे। हे अद्भुत पिता, हम तेरी महिमा के लिए, तेरी वफादारी के लिए, तेरी अच्छाई के लिए और इस सुअवसर के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि हम तेरे वचन को सुन सकते हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं, ये हम सब के लिए है। हम प्रभु तेरे वचन को सुन सकते हैं, तेरे वचन पर विश्वास कर सकते हैं। हमने अनुग्रह को प्राप्त किया है और इस अनुग्रह में हमने प्रभु तेरे वचन को ग्रहण किया, जिससे कि तेरे नाम की महिमा हो अपने लोगों के बीच में, और हम में से हर एक को अपना अनुग्रह दे, जिससे कि सारी प्रशंसा और सारी महिमा स्वर्गीय पिता तेरे को मिले। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जो कि तूने पहले से ही बताया हुआ था, और जो जो बातें हो रही हैं, तूने कहा था जब ये चीजें होती हुए देखो तो अपने सुरों को ऊपर उठाना। इसलिए हम प्रभु आनंदित हैं इन सारी चीजों को देखकर। हम कई बार दुखी भी होते हैं कि हम एक बार यहाँ इकट्ठे नहीं हो पा रहे जिस प्रकार से हम पहले होते थे, पर प्रभु एक चीज के लिए तेरा धन्यवाद जरूर करते हैं कि तूने अभी भी ऐसा संभव होने दिया कि हम अभी भी तेरे सिंहासन के सामने मिलकर आ सकते हैं। जहां पर भी हम धरती पे पाए जाते हैं, अभी भी हम मिलकर के तेरे सिंहासन के पास आ सकते हैं प्रभु, और इसको संभव कराने के लिए तेरे बहुत धन्यवादी हैं, क्योंकि प्रभु तेरा वचन सारी दुनिया में, सारे संसार में पहुंच सके और प्रचार किया जाए। प्रभु अनुग्रह दे और प्रभु ऐसा होने दे कि हम पर अपना अनुग्रह हमें दे प्रभु, और अनुग्रह दे क्योंकि तूने जितनों को अनंत जीवन के लिए निर्धारित किया है, हर एक इस वचन को ग्रहण कर पाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। और प्रभु हमारे स्वर्गीय पिता को धन्यवाद हो कि उसका जो अद्भुत वचन है, उसके लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं कि हम उसको विश्वास कर सकते हैं। हम अपने पूरे मन से उस पर विश्वास कर सकते हैं, और उस वो हम पर प्रकट करता है, प्रकाशित करता है अपने वचन से। और जो विश्वास करता है जैसा कि वचन कहता है, वो परमेश्वर की महिमा को देख सकता है और ग्रहण कर सकता है, और बाइबल की भविष्यवाणियों को विश्वास कर सकता है। और हम एक कलीसिया होने के नाते, जो कि पहलौटे की कलीसिया जिसको हम कह सकते हैं, जो कि जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, और हमको पता है कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जा बैठा विजय होने के बाद, और प्रभु का जो दाहिना हाथ है, विजय उसमें पाई जाती है। अगर आप ये देखें कि मैं इन पिछले दिनों में कितनी बारी मैंने प्रार्थना करी, कि इसलिए प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरे को वो विश्वास दे कि मुझे वो वाला विश्वास दे जो विजय प्राप्त करने वाला विश्वास है। मैं फिर कहता हूँ प्रभु मुझे वो विश्वास दे जिसके अंदर वो सामर्थ्य पाई जाती है, जो विजय की सामर्थ्य है। हम सब जानते हैं कि जो विजय प्राप्त करते हैं सिर्फ वही महिमा को देख सकेंगे, सिर्फ वही महिमा में जा पाएंगे रैप्चर में। ये कितना अद्भुत है कि हम प्रभु के इस वचन को आगे बांट सकते हैं, आगे पहुंचा सकते हैं और हम आगे ले जा सकते हैं। जिस प्रकार से यशाया 53 में वो इतना महत्वपूर्ण जो उद्धार का पाठ हम वहां देखते हैं कि हमारे संदेश को किसने सुना और प्रभु का वचन किसके ऊपर प्रकट हुआ और हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन पर प्रभु का वो विजयी हाथ जो है वो प्रकट हुआ, प्रकाशित हुआ। हम प्रभु का बड़ा सच्चे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि प्रभु ने कि हम जो यहाँ पर हमारे भाई अंद्रयास मिस्किस ने बताया कि 3,500 कनेक्शंस लगे थे सारी दुनिया में और भी कनेक्शंस थे। और अगर हम ये देखें कि प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया में जो हमसे 8 घंटे जिनका समय हमारे से आगे है और जो नॉर्थ अमेरिका है वो हमसे 8 घंटे पीछे हैं और कहीं पर जगह पर रात का 3 बजा है और कहीं जगह शाम है। और अगर हम इसके बारे में सोचें कि सब लोग समय से उठते हैं और समय से उठकर देखते हैं हमारे भाई लोग जो प्रभु का वचन देते हैं वो जो सच्ची गवाही होती है हमारे आगे। एक डॉक्टर बीए ने मुझे एक गवाही दी कि ब्रदर ब्रैनम की जो सेवकाई है और उसकी जो लगातार चलते आना है ये प्रभु ने दी है। ये सेवकाई जो ब्रदर ब्रैनम की सेवकाई को आगे लेकर चलने की सेवकाई आज हमारे पास है वो प्रभु की दी हुई है। और जो लोकल टीवी स्टेशन है और ये बहुत सारे जो वचन थे जो सारे सर्मन थे और लोकल टीवी स्टेशन ने उनको प्रचारा जिससे कि जो आखिरी संदेश है ये आखिरी उन लोगों के पास हर एक बंदे के पास पहुंच जाए। ये जो आखिरी संदेश है ये प्रभु होने दे रहा है और ये समय तैयारी का है और हमारे बीच में ये तैयारी का समय और इस समय को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ ये मेरे लिए एक बहुत ही खास समय है मेरे जीवन का कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम इस समय जो असाधारण बात है कि हम जो मीटिंग्स हमारी रेगुलर होती थी वो अब नहीं हो पा रही हैं। प्रभु ने कहा था कि मेरे लोगों को एकत्रित करो, इकट्ठा करो जिससे कि वो मेरे वचन को सुन सकें। और अगर हम देखें पीछे मुड़कर भाई और बहनों सबके लिए जो इस समय में और प्रभु में मिलाए गए हम कह सकते हैं कि प्रभु ने अनुग्रह होने दिया। और जून महीने में 46 साल पहले हमने इस बिल्डिंग को प्रभु को समर्पित किया था 1974 में। ये जो बिल्डिंग ये जो इमारत है जिसमें अभी हम बोल रहे हैं ये हमने प्रभु को समर्पित करी थी। और भाई और बहनों और करीब 40 देशों से लोग इस बिल्डिंग में इस जगह पर आते हैं और प्रभु का जो अद्भुत वचन है उसको सुनने के लिए। और अब देखिए, और 174 देशों में लोग ट्यून कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा देख सकते हैं और सुन सकते हैं। परमेश्वर के लिए सारी चीजें संभव हैं। और इस समय को जो शायद हमें पसंद नहीं है, और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अभी तक हमारी मीटिंग क्यों नहीं यहाँ शुरू हो रही है एकत्रित होकर, हमको थोड़ा और इंतजार करने की शायद जरूरत है। हमको हमारी ये मीटिंग जो यहाँ सब मिलकर होती है जरूर होंगी, और हम प्रभु का वचन इसी प्रकार से प्रचार करेंगे जैसे हमेशा करते रहे हैं।
Preach the word at this place.
और जिन्होंने इस समय को पहले नहीं देखा, 1958 से हम नियमित रूप से ब्रदर ब्रैनम के सर्मन्स को सुनते रहे हैं, और हमारी जो मीटिंग है हमारी जो, और साल ब साल हमको आशीष मिलती रही, और 70 के दशक में, मैं यहाँ ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो आत्मा है उसने बड़े अद्भुत और सामर्थी तरीके से और हमारे बहुत सारे आशीषित भाई और बहन थे जिन्होंने आशीष प्राप्त करी। कल शाम को मैंने कहा था, और मैंने 50 साल करीब ब्रदर रूस के साथ व्यतीत किए। मैंने उनके साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, और प्रभु ने इतनी ज्यादा बहुतायत से हमको आशीष दी, और हम अपनी भाषाओं में, गैर भाषाओं में, और हमने संगीत गाया, प्रशंसा गाई प्रभु के लिए। और अगर प्रभु ऐसा होने दे कि जो, और शायद ऐसा होने दिया कि बीच में शैतान भी घुस आया, और भाई उन्होंने कहा कि ये ब्रदर रूस को जाना पड़ेगा, ब्रदर स्मिथ को जाना पड़ेगा। एकदम से ऐसा हुआ है, एक आवाज आई और चर्च में से एक ऐसी आवाज उठ के आई जिसने कहा, और उससे पहले बहुतायत से आशीषें मिल रही थी, पर और एक बहुत बड़ी मुश्किल 1979 में आई हमारे सामने, पर प्रभु ने अपनी वफादारी और ईमानदारी से ऐसा होने दिया।
But God, in his faithfulness,
कि उसने अपनी जो उसने उसकी जो असली विरासत थी उसमें उसने शायद ऐसा होने दिया, ऐसी अनुमति दे दी के भाई पॉल स्मिथ और भाई रूस, मैंने दोनों नामों को पूरा मैंने अपने कानों से सुना के इन दोनों भाइयों का अभिषेक होना चाहिए। और एकदम से
just took everything in her own hands and suddenly it said only
or
my servant
ये कहा गया कि आपको पता है कि किस किस ने इस चीज को देखा कि उसके बाद क्या क्या हुआ। मैंने कई बारी कि सारे संसार को ये बात पता लगे कि हमको भी एक ऐसी कठिनाई और बड़ी ही दुखदाई सफर से होकर गुजरना पड़ा और एक दिन शनिवार को 10 बजे एक बड़ी ऊंची आवाज से मैंने सुना और उस आवाज ने कहा कि प्रेरितों के काम की किताब को ढूंढ और भाई अबर अपने पत्नी के साथ और आप देखिए क्या हुआ, ये इससे क्या हुआ। जब मैंने उस भविष्यवाणी करने वाली स्त्री को बोला कि ये जो तुम एक स्त्री को लेकर भविष्यवाणी कराने के लिए परमेश्वर के कार्य के लिए अगुवाई में ला रहे हो, ये उसके परमेश्वर के कार्यक्रम के अनुसार नहीं है। क्योंकि इससे क्या हुआ कि जो झूठ और गलती यहाँ पर पल रही थी, एक दिन वो प्रकट हो गई, एक दिन वो सामने आ गई और प्रभु ने ऐसा दर्शा दिया कि इस प्रकार की गलती अब दोबारा बीच में नहीं आ सकेगी और सच्चाई वाला वचन और सच्चाई का आत्मा जो चीज लेकर आया वो चीज आगे बढ़ने लगी। और जिस प्रकार से कलीसिया जो है वो पवित्र आत्मा की वर्षा और अभिषेक के कारण चली और आगे बढ़ी और स्थापना हुई, जिस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा बीच में था और उस आत्मा के द्वारा बहुत सारी सेविकाएं, जो पांच सेविकाएं हमारे बीच में वो आईं और परमेश्वर का आत्मा और वो आत्मा में हो करके कलीसिया में काम करने लगा। और आज भी इसी प्रकार से जो अंतिम समय आ गया और जो पहलौटे की जो कलीसिया है और सच्ची कलीसिया है और जो प्रभु की जीवते परमेश्वर की सच्ची कलीसिया है, इसमें अलौकिक और सामर्थी परमेश्वर का काम होना शुरू हो गया और उसके बाद अब कोई भी और अड़चन और दिक्कत पेश नहीं आएगी। हम एक साथ मिलकर के इस कलीसिया के काम को, परमेश्वर के काम को कामिल होते और संपूर्ण होते देखेंगे। और तब आत्मा और दुल्हन एक साथ मिलकर के एक आवाज में कह सकेगी, हे प्रभु आ। सारे नहीं, सब लोग नहीं, जो परमेश्वर की उद्धार की योजना में पाए जाते हैं, जो उस पहलौठे की कलीसिया में पाए जाते हैं, जो उस पहलौठे की उद्धार की योजना में पाए जाते हैं, उनको ये पता है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। उनको प्रभु ये ऊंची आवाज में कह सकता है, साफ साफ कह सकता है कि तुम्हारी आंखें आशीषित हों, तुम्हारे कान आशीषित हों, क्योंकि तुम देख सकते हो और सुन सकते हो। और हम ये जान पाते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा इन सारे वर्षों में और सारे के सारे संदेशों के द्वारा और भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री के द्वारा, सेवकाई के द्वारा, और किस प्रकार से वो हमको परमेश्वर की सारी योजना में बहाल करके वापस लाया, हम उसके बारे में प्रचार करते हैं। हमने किया प्रचार और हमने उसके बारे में लिखा भी और हम विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ भी अपने संदेश में कहा, वचन में कहा, हम वो सारा का सारा संपूर्ण होते हुए, पूरक होते हुए देखेंगे। और देखिए आज भी वो हो रहा है। और ये जितनी बीमारियां और ये दुष्कर्म हम देख रहे हैं, ये फ्लू और ये बीमारियां जो हम देख रहे हैं, ये सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। सारी दुनिया में फैला हुआ है ये, और वातावरण बदल रहा है और संसार में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो बढ़ गया है। हम इस पर बार बार कहना चाहते हैं कि हमारी आंखें बहुत ही आशीषित हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जब तुम आंखों से ये सारी चीजें होते हुए देख लो और तुम्हारे सामने ये सब चीजें घटित हो रही हों, तो अपने सिरों को ऊंचा उठाना, क्योंकि तुमको ये पता है कि अब तुम्हारा उद्धार एकदम निकट आ पहुंचा है। और हम पूरे मन से और पूरे विश्वास से उस वफादार पिता के लिए कह सकते हैं कि उस संदेश को जो उसने भाई ब्रैनम के द्वारा हमारे तक पहुंचाया, जिससे कि हम बाइबल में वापस, वचन में वापस जा सके, बहाल हो सके और प्रेरितों के उन कामों में बहाल हो सके, प्रेरितों की शिक्षा में बहाल हो सके, हमारी वापसी हो सकी। और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम हर तरीके से शिक्षा में हमको वो शिक्षा जो चाहिए थी आरंभ की, वो मिल चुकी। एक प्रभु, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, हर चीज प्रभु ने हमारे ऊपर प्रकाशित कर दी, बता दी। और हम उन सारी सांप्रदायिक कंफ्यूजन वाली बाबुल की शिक्षाओं से बाहर आ गए हैं। और जिस प्रकार से वचन में प्रतिज्ञा थी कि ए मेरे लोगों, आश्वासन था, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ और अपवित्र चीजों को मत छूना, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तब तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो जाओगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर पिता हूं। जो प्रभु से जन्मे हैं, वो ही जो के उस पहलौटे की, जो उस पहलौटे की कलीसिया को बिलोंग करते हैं, जो उसमें पाए जाते हैं, वो और वो इस कलीसिया में, जो पहलौटे की कलीसिया उसमें पाए जाते हैं, वही उनको वो सुधार को अच्छे तरीके से, बली भली भांति और अच्छे हृदय से ग्रहण करेंगे। और जो के पवित्र शास्त्र में लिखा है, मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा और मैं जो हमारा जन्मिक, हमारा जो अधिकार है, जो हमारा जो जन्म अधिकार है, ये तो उत्पत्ति की किताब के चौथे अध्याय में हमको लेकर जाता है कि हमारा बर्थ राइट यानी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है। और आप जानते हैं कि केन जो है वो फल फूल और सब्जियां और हरियाली लेकर आया भेंट चढ़ाने के लिए, और उसका जो भाई था, वो जो आबिल था, वो उन जानवरों में जो पहलौटा होता है, वो जो मेमने का बच्चा होता है, उसको लेकर आया। और ईसाव को पता नहीं था कि जन्म सिद्ध अधिकार किसे कहते हैं, और याकूब को इसके बारे में अच्छी तरह पता था कि याकूब की ये जिज्ञासा थी कि ये जो जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मुझे मिल जाए। और प्रभु ने कहा, जो भी पहलौटे हैं वो सारे मेरे हैं और वो मेरे लिए पवित्र हैं। और जो पुराने नियम को पढ़ता है और प्रभु ने उसका संबंध बताया, और ये हमारे ऊपर साफ हो जाता है कि क्यों हमारे प्रभु ने एक पहलौता होने के नाते प्रभु हमारे पास आया, क्योंकि वो हमको लेपालक पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दे दे, पहलौटा होने के नाते ये हमको अनुग्रह मिल गया। बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, हम देखते हैं, सुने इब्रानियों एक अध्याय और कुछ और भी वंश संदेश हम देखेंगे। इब्रानियों एक अध्याय, ये मेरी प्रार्थना है और मैं जानता हूं कि प्रभु के सामने के जो आखिरी संदेश है और जो ये जो ये सारी जिसमें प्रतिज्ञाएं पाई जाती हैं, जैसे वो दी गई थी जो ब्रदर ब्रैनम के सेवकाई के द्वारा प्राप्त हुई हमें वो हमारे पास उस आत्मिक आज्ञा के अनुसार हमको मिला है, हमने ग्रहण किया है और हम उनको आगे लेकर जा रहे हैं अपने जीवनों में, और प्रभु अपने वचन के ऊपर निगरानी किए हुए है जो विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करते हैं, वही इसके पूरक होने को, संपूर्ण होने को देख भी पाएंगे जब तक के प्रभु की वापसी ना हो जाए। इब्रानियों पहला अध्याय पहला अध्याय और एक आयत। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दातों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें करी, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है, और वो उसकी महिमा का, तीसरी आयत, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा मन के दाहिने जा बैठा। वो तो सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य से संभालता है। और वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। और देखिए वचन में लिखा है कि मेरे दाहिने हाथ बैठ, ये वचन में लिखा है, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैरों की चौकी ना बना दूं। और जैसा हमने पढ़ा, और हमारा प्रभु जिस समय वो क्रूस पे लटका था और उसके पास उसने मृत्यु, शैतान और नरक सबके ऊपर विजय प्राप्त करी, और ये विजय उसने हमको भी दे दी। हम प्रभु के बड़े आभारी हैं हृदय से। मैंने कितनी बारी कहा कि जो पुनरुत्थान है, प्रभु का पुनरुत्थान, रिजरेक्शन जो है, ये हमारे लिए गारंटी है कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। और मैं कुछ महीनों से कह रहा था कि ये जो गुड फ्राइडे और ईस्टर और ये असेंशन डे जो लोग मनाते हैं, जैसा मैंने कल कहा कि जो प्रभु के सच्ची संतान हैं, वो तो ये सारी बातें अपने जीवनों में अनुभव करते आ रहे हैं।
What happened for us on that Good Friday?
और जब प्रभु ने चिल्ला कर क्रूस पर कहा कि पूरा हुआ, ये सब कंप्लीट हो गया, क्या पूरा हो गया? हमारे उद्धार का काम, हमारे गुनाहों का फिदिये का जो काम था, वो पूरा हो गया।
And the letter of requirements was torn into pieces.
और अब हम अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंच सकते हैं, और उसके बाद जो स्वर्गारोहण का जो दिन था, और जिस प्रकार हमारा उद्धार करता ऊपर उठाया गया, जैसा पहले भी कहा गया था कि मैं जाता हूं। उसने कहा मैं जाता हूं जिससे जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जिससे कि मैं जब वापस आऊंगा तो तुमको अपने साथ ले जाऊं, जिससे कि जहां पर मैं हूं वहां तुम भी रहो। हम वादा किए हुए, वादा की हुई संतान है परमेश्वर की, और हमारे लिए प्रभु ने वो स्थान पहले से तैयार करके रखा है, और प्रभु आने वाला है। और मैं आपको बता दूं, इतना ज्यादा प्रभु का आने का दिन कभी भी इतना नजदीक और निकट नहीं था, ये मैं आपको बता रहा हूं, जितना अब है। ऐसा समझ लीजिए कि वो दरवाजे पे खड़ा है, इतना नजदीक है। हम हमारी तैयारी को हम तैयार रखें। और छठी आयत में देखिए क्या कह रहा है, इब्रानियों एक छह, और जब पहलौटे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, जब पहलौटे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें, सारे के सारे स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। जब वो पहलौटे को, और इसी के द्वारा हमको, इसी के द्वारा, इसी जन्मसिद्ध अधिकार के द्वारा ही तो हम परमेश्वर के संतान, बेटे और बेटियां बन गए, उसके अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया, और प्रभु के नाम की आशीष हो। और अब हिब्रू 12 अध्याय, इब्रानियों बारह, यहां पर 22वीं आयत में देखिए, 22 और 23 आयत में देखिए क्या लिखा है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की सभा, और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। और ये बता रहा है कि यरूशलेम से ये सारी बातें और सियोन के पहाड़ से चलें, और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जो है आज उसी वचन में जो आरंभ में था, जबकि परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया, हम जानते हैं ऐसा हुआ, और वो सियोन के पर्वत पर और ऊपर के कमरे में ऐसा हुआ, और वहां वचन बोला गया। और आज हम पहलौठों की उसी सभा में, उसी कलीसिया में आज वापस पहुंच चुके हैं। प्रभु के नाम की कितनी महिमा हो। और प्रभु यशाया में कहता है, यशाया 44 में कहता है उसकी छठी आयत में, यशाया 44:6, परमेश्वर यूं फरमाता है, यशाया 44:6,
and his redeemer the Lord of hosts.
यहोवा कहता है, जो इज़राइल का राजा है और सेनों का यहोवा, वो छुड़ाने वाला, वो क्या कहता है? मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़कर कोई परमेश्वर है ही नहीं, वही आदि और अंत है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने हमारे साथ ही एक प्रारंभ की, एक शुरुआत किया, और हमारे साथ ही हमारे जीवनों में उसका अंत भी करेगा। अब देखिए परमेश्वर के, अब देखिए प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय को देखें, इसको भूले ना, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय, और आत्मा और दुल्हन कहती है, हे प्रभु आ, और जो कुछ भी कह, जो भी सुनने वाला है वो कहे, और जो सुनने वाला है वो कहे आ, और जो अपने दिल से मन से विश्वास करता है और वो जाता है, वो चाहे तक के आज, आज कहाँ है आत्मा, कहाँ पर है दुल्हन, जहाँ सिर्फ आत्मा और दुल्हन वहां पाई जाती है जहां पर के बुलाहट किए हुए लोग मौजूद हैं, जिनको बुलाया गया है, जो तैयारी में लगे हैं, जो बुलाए हुए लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जिनके अंदर कोई मिलावट नहीं पाई जाती, जिनके अंदर कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती, कोई भी गड़बड़ शिक्षा, कोई भी गलत शिक्षा रैप्चर के अंदर सम्मिलित नहीं हो पाएगी। केवल वही जो कि दुल्हन है, जो मेमने की दुल्हन है, जिसने के प्रभु के लहू में अपने अपने आप को धोया और साफ किया है, और परमेश्वर के वचन से अपने आप को पवित्र किया है, और उनकी मोहर, उनके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लग गई है, उन्हीं का उद्धार शारीरिक रूप में भी होगा। और प्रकाशित वाक्य 22 और 12 में हम पढ़ते हैं, 12 और 13 में, प्रकाशित वाक्य 22, 12 और 13, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हरेक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। देखिए इस चीज को हम कितना ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं। अब मुझे अनुमति दें ये कहने की कि मैं ऐसा सोचता था कि 1979 से अब तक 40 साल बीत गए, और एक नया समय स्टार्ट होगा। मुझे पता नहीं था कि ये चीजें अब ऐसे लगेगा कि समाप्त हो रही हैं। मैंने अपनी उस बुलाहट को जो प्रभु ने मुझे दी, मैं शहर शहर गया, मैं देश देश गया, नगर नगर गया, और जगह जगह गया, जिससे कि मैं उस आखिरी संदेश को जो प्रभु ने मुझे, जिसके लिए बुलाया था कि उस नगर नगर और देश देश में मैं जाकर प्रचार कर सकूं, और जैसा प्रभु ने मुझे बताया था, ये सुसमाचार जो परमेश्वर के राज का सुसमाचार है, ये देश देश में और कोने कोने में एक गवाही के तौर पर प्रचार किया जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो अंत आ जाएगा। और जिस प्रकार सुसमाचार सच्चा है और वचन सच्चा है, जिस प्रकार ये अंतिम समय बताया गया, अंतिम समय का संदेश बताया गया आज, और हमको पता है कि अब अंत आ जाएगा, जैसा प्रभु ने इसके बारे में घोषणा करी थी। एक बार फिर प्रकाशित वाक्य 22, 12 देखें, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए उसका प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा और पहला और अंतिम आदि और अंत हूँ। कितना बड़ा अनुग्रह है कि हम अपने मनों से विश्वास कर सकते हैं। एक और विचार बताना चाहता हूँ, अगर हम परमेश्वर की सृष्टि की बात करें और हम सृष्टि के आरंभ की बात करें, सृष्टि की बात करें आकाश और पृथ्वी की, कि आत्मिक सृष्टि, वो कहता है कि अगर जो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है, बाइबल बताती है, वो एक नई सृष्टि है। जो वादा किया हुआ बीज यानी वंश, ये तो उत्पत्ति 3:15 से शुरू हुआ और गलतियों 3 अध्याय में भी हम इसके बारे में जब तक के वो बीज प्रकट नहीं होगा जिसके लिए कि वो प्रतिज्ञा की गई, वो वाचा बांधी गई। पवित्र आत्मा ने मरियम के ऊपर छाया करी और वहां से वो पवित्र जन परमेश्वर का पुत्र पैदा हुआ, उसने जन्म लिया। यहां पर वो नुक्ता है। देखिए, जो परमेश्वर का वचन है यही वो बीज है, पर और ये बीज और उसके अंदर जो वास्तविकता पाई जाती है, और साइमन ने हमारे अपने प्रभु को, छोटे से बच्चे को उसने अपने गोद में लेकर, जब उसने देखा जन्मे प्रभु को जो छोटा सा था, उसने उस बीज को जो एक दिन बीज रूप में था जिसमें जीवन था, आज वो जीवन एक शरीर के रूप में जब आ गया तो साइमन ने उस बच्चे को गोद में लेकर कहा। इस प्रकार से क्या होता है, पहले हम उस बीज के बारे में सुनते हैं, यानी जो वंश है, जो बीज है, उसको हम पहले सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, फिर वो हमारे अंदर, वो जो उसके अंदर जो जीवन है, वो जो जीवन है बीज के अंदर, वो हमारे मनों में जब ग्रहण हो जाता है तो वो हम उसको पा लेते हैं, उसमें उसको हम पाकर वो हमारे अंदर उगता है, तब हम एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, और पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गईं। और सब बातें नई हो गईं। कब? जब हम मसीह में हैं। जब मसीह में हम आ जाते हैं तो हम नई सृष्टि हो जाते हैं। और मैं फिर पढ़ता हूँ इब्रानियों 12 को दोबारा पढ़ते हैं। वो प्रभु अपने वचन से बात करता है। सियोन पहाड़ पर इकट्ठे हो जाओ, और जो पहलौटे हो उनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं, वो सियोन पर इकट्ठे हो जाओ। और मैं प्रभु के सामने अपने विश्वास से कहता हूँ, हम एक मिली जुली हुई जमात से बात नहीं कर रहे, हम ऐसे मिक्स झुंड से बात नहीं कर रहे, हम तो उन लोगों से बात कर रहे हैं जो परमेश्वर की बुलाई हुई बुलाहट से चुने हुए लोग हैं, जो इस दुनिया की चीजों को छोड़कर और निकल कर आए हैं, जिससे कि हम परमेश्वर की उस सारी योजना को अनुभव कर पाएं। सिर्फ यही नहीं कि हम भाई ब्रनम की सेवकाई के बारे में सुनते रहें और उन लोगों के बाद शिक्षा को माने जो अपने अपने अनुसार से उसको प्रीच कर रहे हैं। हम देखिए कितनी सारी शिक्षाएं, कितनी सारी शिक्षाएं जो है वो इस मैसेज में आ गई और सारे के सारे लोग भाई ब्रैनम की तरफ इशारा करते हैं और जब ये बातें हम सुनते हैं और भाई ब्रैनम की तरफ जब इशारा करते हैं और कोई उनको अपने हिसाब से उसका अनुवाद करके बताता है, अपने विद्वान से अपनी विद्या से बताते हैं, इस वजह से आज बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारे झुंड इसी मैसेज में और इसी अंतिम संदेश के बीच में पैदा हो गए हैं। और एंड टाइम मैसेज के जो 11 कलीसियाएं जो अंतिम समय की कलीसियाएं कहलाती हैं, अंतिम समय की कलीसिया केवल एक और केवल एक ही कलीसिया है जो कि पहलोटे की कलीसिया पर खड़ी है, जो पहलोटे की कलीसिया है जिसका चरित्र, जिसका मन और जिसका करैक्टर और जिसका चरित्र वैसा ही है जैसे कि पहलोटे यानी प्रभु यीशु मसीह का था, हमारे उद्धार करता की था। और ये सब कुछ जो है उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में प्रकट हो रहा है और होगा, क्योंकि हम वादा किए हुई संतान हैं, हम प्रतिज्ञा की वाचा की संतान हैं, और दोस्त जो कि प्रभु, कई लोग ये कहते हैं कि प्रभु ने अनुग्रह की जो सिंहासन है उसको छोड़ दिया, कई ये कहते हैं, क्या मैं कहूं, क्योंकि वो जो दया की जो क्या जो सिंहासन है, और भाई ब्रैनम ने कहा, उन्होंने 7 सील्स खोलते हुए कहा के मेमने ने जो वो किताब ली, ये नहीं कि उसने उस सिंहासन को छोड़ दिया और उसको छोड़ के हट गया, उसने वो जो किताब 7 मोहरों से बंद थी वो ले ली और उनको खोला मेमने ने। और इस बात को कृपया समझें कि इन बातों का क्या मतलब है, इन बातों का क्या मतलब है, ये बुलाहट जो दी गई मुझे उसके द्वारा मुझे ये प्रभु ने समझाया कि इन बातों का, इन संदेशों का, इस वचन का क्या मतलब है। और यहाँ पर सिर्फ जो पवित्र और पवित्र वचन के चहु और जब हम एकत्रित होते हैं वहां पर पूरक होना है, वहां संपूर्णता होनी है। एक बार फिर कहना चाहता हूं भाई और बहनों के ब्रदर ब्रैनम के समय में उन्होंने एक गेहूं के खेत को देखा और उन्होंने वहां पर जंगल चरी को भी देखा, जो जंगली पेड़ होते हैं उसको भी देखा, और दोनों जो थे वो झुके हुए थे, ऐसे लग रहा था दोनों दंडवत कर रहे हों। और जब बारिश आई तो दोनों के ऊपर वर्षा हुई और दोनों ने चिल्लाकर बोला हालेलुया, प्रभु की बड़ाई हो, जो गलत बीज का पेड़ था और जो अच्छे बीज के पेड़ गेहूं था, वो दोनों ने एक साथ ही दंडवत किया, एक साथ जय जयकार किया, मैं प्रभु के सामने बोल रहा हूँ। और वचन में लिखा है उस समय पर, कटाई के समय पर प्रभु अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा कि जाओ और उस खेत में जा करके और वहां पर जो चरी है, जो गंदे पेड़ हैं, जो खराब पेड़ हैं, उनको काट कर दो और जो गेहूं है, जो अच्छा बीज है, जो अच्छा बीज जो है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं प्रभु के सामने कह रहा हूं कि प्रभु प्रभु ने मुझे पका हुआ गेहूं का बीज दिखाया और उसने मुझसे कहा, मेरे सेवक, ये जो भेंट है, ये मैंने बड़ी बड़ी गेहूं की खेत देखे, पके हुए गेहूं, परिपक्व बीज देखे एक, और जब 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 उसने मुझे वो खेत दिखाए तो उन खेतों में कोई चरी और कोई गंदा बीज, कोई गंदा पेड़, कोई गलत घास नहीं थी। वहाँ एक भी टेरस नहीं पाया जाता था। वहाँ तो सिर्फ सिर्फ और खालिस खालिस वो बीज, वो पवित्र बीज था जो प्रभु ने मुझे दिखाया, और सिर्फ पका हुआ मैच्योर्ड बीज था जो प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये वो समय आ गया है जबकि वो जो बीज जो है वो पक चुका है, फसल जो है वो तैयार हो चुकी है, पर उसके अंदर बहुत संयम है, वो बहुत धीरज रखने वाला परमेश्वर है। पर एक बात जरूरी है, जब प्रभु अपनी और जब अपने गेहूं को और अपनी फसल को एकत्रित करेगा, तब उसके बीच में एक भी दागी दाना या एक भी चरी का पेड़ या एक भी गलत पेड़ या घास प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके अंदर सिर्फ पवित्र वचन और पवित्र दाना जो उसकी फसल में परिपक्व हो चुका है, जो उसकी योजना के अनुसार है, केवल वो ही उसमें शामिल हो पाएगा। जिन्होंने के अपने ले पालक होने के अनुभव को प्राप्त किया है और उन वो यस और आमीन कहते हैं, हाँ और आमीन कहते हैं। और अब हम एक बार फिर कहते हैं, हम जिस प्रकार से प्रभु का पहली आमद हुई थी उस समय जितने वादे और प्रतिज्ञाएं पूरी हुई थीं, उसी प्रकार जो कि पहले से कही गई थीं, इसी प्रकार से ये भी एकदम वास्तव में वैसा ही होना है कि जो सेवकाई जिसके लिए बुलाहट की गई वो सेवकाई कंप्लीट की गई है, पूरा की गई है, प्रभु ने होने दी। और अब समय आ गया कि हम ये जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये जो योजना का काम है, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु किसी सामर्थ के दिन में सामर्थ के साथ हमारे साथ हमारे पास प्रकट हो जाएगा। और एक बार फिर और वो अपने वचन को, जो पवित्र वचन है, वो उसको कन्फर्म कर रहा है, उसको प्रकट कर रहा है, और सारे संसार में जिन्होंने भी सुना इस वचन को सब आशीषित हों, और जो जो ट्रांसलेट कर रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा आशीष मिले, और जो अपनी अपनी भाषा में बता रहे हैं उन वो भी आशीषित हों, और जो सुन रहे हैं वो भी आशीषित हों। और मैं भाई नाम्बियर को मैं आशीष देना चाहूंगा, उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु की आशीष उनके ऊपर जो के फ्रेंच भाषा में अनुवाद करते हैं, और भी सारे जहां जहां पर भी हैं जो कर रहे हैं, और जो यहां हैं जो भी अनुवाद कर रहे हैं, जो जहां भी अनुवाद कर रहे हैं अपने घरों में, प्रभु का जो वचन है वो संसार के छोर छोर कोने कोने में पहुंच रहा है। मैं तो अब बुढ़ा हो रहा हूँ, वृद्ध हो रहा हूँ, मेरी उम्र आ रही है, और मैं मुझे दिखाई देना भी कम दिखता है, और मुझे सारा कुछ लेकर चलना, पर मैं प्रभु का बड़ा धन्यवादी हूँ कि मैं इतना ज्यादा अब यात्रा भी नहीं कर सकता, फिर भी प्रभु बहुत सारे भाई लोग जो हैं, जो इस सेविकाओं में और टेक्निक्स में और तकनीकी तौर पर और जो इन सारी चीजों को जो सारे संसार में भाई पाए जाते हैं, प्रभु सारे के सारे अनुवादकों को और सारे के सारे भाइयों को जो सेवकाई में लगे हैं और जो इस भाषा को सुन रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह को, और एक बार हम फिर कह दें कि दुल्हन और आत्मा ही कह सकती है, सिर्फ दुल्हन और आत्मा ही कह सकती है, प्रभु आ। जैसा किसी ने कहा, फोन पे कहा कि कि कितने अद्भुत कार्य हो रहे हैं आजकल मैसेज चर्चेज में और कितनी तरीके से वहां पर अजीब अजीब कार्य हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो तो अब कैरिस्मेटिक शिक्षाओं में चले गए हैं वो तो अब चमत्कारिक शिक्षाओं को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब हम सुनते हैं हमको बड़ा दुख पहुंचता है कि हम अपनी प्रारंभिक शिक्षा और सच्ची शिक्षा को क्यों छोड़ रहे हैं क्यों छोड़ गए हैं। यही यीशु जिसने प्रस्थान किया अपने चेलों के सामने उनके देखते और वो बादलों में उठा लिया गया और वहां पर जो गवाही देने वाले थे उन्होंने कहा यही प्रभु यीशु मसीह जिसको तुमने इस प्रकार जाते हुए देखा ठीक इसी प्रकार से तुम इसको आते हुए बादलों पर देखोगे। इस चीज की गवाही दी जा चुकी है। इसके अलावा अगर और कोई शिक्षा प्रभु के आने के बारे में दी जा रही है वो शिक्षा गलत है और उससे गलत मार्गदर्शन होता है। और सारे के सुसमाचारों में प्रभु ने अपने अंत समय के बारे में बताया। उसने कहा सावधान रहना कि कोई तुम्हें धोखे में ना डाल दे धोखे में ना आ जाना प्रभु के नाम की बड़ी महिमा हो। मैं कहना चाहता हूँ केवल जो पूर्व ज्ञान के द्वारा जो चुना हुआ इलेक्ट है वो धोखा नहीं खाएगा वो कभी धोखे में नहीं जाएगा वो कभी अविश्वास में नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उस कलीसिया से ताल्लुक रखता है जो पहलौटे की कलीसिया है और जो पहलौटे की कलीसिया है वही दुल्हन बनती है वही दुल्हन में कन्वर्ट होती है और प्रभु के नाम को सारी महिमा मिले। और सारे जितने सेवकाई करने वाले भाई लोग हैं जो आज जिन्होंने मुझे आज फोन किया और सारे के सारे और सारे जगह से सारी भाषाओं में बोलने वाले और केवल उसी चीज का प्रचार करें जो हम परमेश्वर के वचन से प्रचार करते हैं क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे प्रभु ने कहा पर उसकी बातें उसका वचन कभी नहीं टलने वाला वचन है। और आशीषित हों और बहुत सारी आशीषें परमेश्वर की लेकर जाएं और प्रभु आपके साथ हो। हम एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और फिर इस आशा में कि प्रभु अगर चाहेगा तो हम दोबारा एक बार फिर एकत्रित होंगे और जो हमने प्रभु के लिए जगह दी है और यहाँ पर हम दोबारा आ सकेंगे और परमेश्वर का वचन हम दोबारा सुन सकेंगे और जो इस जगह पर नहीं आ सकते वो सभी अपने अपने देशों में अपने अपने स्थानों में नगरों में ऑनलाइन सुन सकते हैं। और प्रभु की प्रशंसा और महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु स्वर्गीय पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं हम अपने हृदयों से तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे इस वचन के लिए और जो आज तूने हमसे अपने वचन से आज भी जो तेरा वचन है प्रभु जब वो भेजा जाता है तो वो वापस नहीं आता उसके अंदर बहुत असर है। और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो तूने हमको दिया और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि इन कठिनाइयों के कारण और ये जो नियम बनाए गए हैं सरकारी तौर पे इसके बावजूद भी तेरा जो वचन है वो इस जगह से प्रचारा जा रहा है संसार में जगह जगह प्रचारा जा रहा है और लोग सुन पा रहे हैं और जो भी तेरे लोग हैं प्रभु वो तेरी आवाज को सुन पा रहे हैं और सुन पाएंगे और प्रभु इस बात को हम अनुभव कर पाएंगे प्रभु हमारे प्रिय प्रभु हमारे को हमारे मनोक में अपनी जागृति दे, हमें ऊंचा उठा वचन के द्वारा और सारी आशीषें हमें मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन।